ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 6 नवंबर 2022 के लिए है। विषय: आदम और प्रतीत आदमी। स्वर्णपथ: ग्रंथियों। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। उत्तरदायी अध्ययन भजन संहिता यहूदा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना। धार्मिक लोग खजूर के नियन फूले फलेंगे और लुबनान के देवदार के नियन भरते रहेंगे। वो यहोवा के भवन में रूपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रगत हो कि यहोवा सीधा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटलता कुछ भी नहीं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्विक्ता परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। पाठ उपदेश बाइबल में से उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारे रींगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रींगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति। तो भी कोहर पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी हो गया। और यहोवा परमेश्वर ने पर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके संती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को, जो उसने आदम से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। उत्पत्ति। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सांप धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी और वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझको बहका दिया, तब मैंने खाया। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अनंत में मट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। यूहन्ना। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना। इन बातों के बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलम को गया। यरूशलम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतेसदा कहलाता है, और उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई उतरता था वो ठीक हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काठ उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी काठ उठाकर चलने फिरने लगा। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मी बरसाता है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। लूका। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगत रूप से नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इफ्सियों। तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर सभी चीजों का उसकी अपनी समानता पर पक्षपात करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है, सत्यता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर, जो अपनी शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। नश्वर कला की नींव मनुष्य की उत्पत्ति का एक गलत अर्थ है। ठीक से शुरू करने के लिए सही तरीके से समाप्त करना है। आदम शब्द इब्रानी एडमा से लिया गया है, जो जमीन के लाल रंग, धूल और शून्यता को दर्शाता है। आदम नाम को 2 अक्षरों में विभाजित करें तो इसका अर्थ है एक बंध या बाधा। इससे ये अनुसारण करता है कि आदम आदर्श नहीं था, जिसके लिए पृथ्वी धन्य थी। आदर्श व्यक्ति का नियुक्त समय में पता चला था और उसे यीशु मसीह के रूप में जाना जाता था। दिव्य प्रेम के बच्चों को लुभाने के लिए एक बोलने वाला सांप कहाँ से आता है? सांप रूपक में बुराई ही प्रवेश करती है। हमारे पास जानवरों के साम्राज्य में कुछ भी नहीं है जो वर्णित प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है, एक बात करने वाला सांप, और उस बुराई का आनंद लेना चाहिए जो भी आकृति प्रस्तुत की गई है। वो स्वयं का खंडन करती है और सत्य और अच्छाई में ना तो मूल है और ना ही समर्थन है। इसे देखकर हमें बुराई के सभी दावों से लड़ने के लिए विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बेकार और असत्य है। आदम त्रुटि का पर्यायवाची भावतिक मन में एक विश्वास का अर्थ देता है। वो मनुष्य पर अपना राज्य कुछ हल्के ढंग से शुरू करता है, लेकिन वो झूठ में भरता है और उसका जीवन छोटा हो जाता है। इस विकास में सत्य के अमर आध्यात्मिक नियम को नश्वर भावतिक अर्थ के विपरीत हमेशा के लिए प्रकट किया जाता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है, होने का दिव्य सिद्धांत। भगवान के बच्चों के पास एक मन है। अच्छाई बुराई में कैसे ढल सकती है जब मनुष्य का मन ईश्वर कभी पाप नहीं करता है। पूर्णता का मानक मूल रूप से भगवान और मनुष्य थे। क्या ईश्वर ने अपने स्वयं के मानक को नीचे रखा है और क्या मनुष्य पाप में गिर गया है? ईश्वर मनुष्य का निर्माता है। मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शीश पूर्ण है। दिव्य विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। अगर कभी ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वरीय पूर्णता को व्यक्त नहीं किया, तो ये ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वर को व्यक्त नहीं किया। और फलसफा पूर्ण एक समय था जब देवता प्रसन्न थे। ये इकाई के बिना है। अगर मनुष्य ने पूर्णता खो दी है, तो उसने अपने सिद्ध सिद्धांत दिव्य मन को खो दिया है। यदि मनुष्य कभी भी इस सिद्ध सिद्धांत या मन के बिना अस्तित्व में था, तो मनुष्य का अस्तित्व एक मैथिक था। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सद्भाव मन लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। अथा मन प्रकट होता है। अनंत प्रेम की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, पराक्रम, ईश्वरीय और महिमा सारे स्थान को भर देती है। वो पर्याप्त है। मानव भाषा जो मौजूद है उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा दोहरा सकती है। परम आदर्श मनुष्य उसके अनंत सिद्धांत प्रेम की तुलना में ना तो अधिक देखा और ना ही समझा जाता है। सिद्धांत और उसका विचार मनुष्य अस्तित्व और शाश्वत है। अनंत के अंक जिन्हें 7 दिन कहा जाता है, कभी भी समय के कैलेंडर के अनुसार नहीं गिना जा सकता। ये दिन प्रकट होंगे जैसे मृत्यु डर गायब हो जाता है, और वो अनंत काल जीवन की नवीनियता को प्रकट करेंगे, जिसमें त्रुटि की सभी भावना हमेशा के लिए गायब हो जाती है और विचार दिव्य अनंत कालान को स्वीकार करता है। सभी वास्तविक शाश्वत हैं। पूर्णता वास्तविकता को रेखानंत कराती है। पूर्णता के बिना कुछ भी पूर्ण वास्तविक नहीं है। सभी चीजें गायब होती रहेंगी जब तक पूर्णता प्रकट ना हो जाए, वास्तविकता सामने ना आ जाए। हमें सभी जगहों पर भूतों के बारे में विचार छोड़ने चाहिए। हमें अंधविश्वास के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इसमें सभी विश्वास पैदा करना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि त्रुटि वास्तविक नहीं है, तो हम प्रगति के लिए तैयार होंगे। जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर। खोई हुई छवि कोई छवि नहीं है। सच्ची समानता दिव्य प्रतिबिंब में खोज नहीं सकती। उसे समझते हुए यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आध्यात्मिक रूप से अनुसरण किया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक भगवान की असत्य छवि का इतिहास है, जिसे एक पापी नश्वर नाम दिया गया है। सही तरीके से देखे जाने का यह विक्षेप भगवान के उचित प्रतिबिंब और मनुष्य की आध्यात्मिक वास्तविकता का सुझाव देने का कार्य करता है, जैसा कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में दिया गया है। हम आध्यात्मिक सर्जन के इस संक्षिप्त गौरवशाली इस इतिहास को, जैसा कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, ना कि मनुष्य के हाथों में, आत्मा के पालन में, ना कि सामग्री में। खुशी से अभी और हमेशा के लिए परमेश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए, ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और सर्वव्यापीता को स्वीकार करके, मनुष्य की सामर्थ्यता और अमरता बरकरार है। हमें इस विपरीत धारणा से दूर देखना चाहिए कि मनुष्य भावतिक रूप से बनाया गया है और हमारी निगाहें सृष्टि के आध्यात्मिक रिकॉर्ड की ओर मुड़ेंगी, जिसे समझ और दिल पर हीरे की नोक से और एक स्वर्ग दूत की कलम पर उकेरा जाना चाहिए। इसे जाने, नश्वर और ईमानदारी से मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति की तलाश करें, जो सभी भावतिक स्वर्थ से अप्रासंगिक है। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया, जो उसे दिखाई दिया, जहाँ पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। अनंत काल तक ईश्वर की सरकार के तहत मनुष्य के लिए कभी पैदा ना होने और ना कभी मरने से उसकी उच्च संपत्ति से गिरना असंभव था। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।